दिन भर 20 जून दिन मंगलवार, मैं हूं रेहान फदर। 1 जुलाई से जीएसटी के लागू होने का औपचारिक ऐलान।
ओवर द मीडियम एंड द लॉन्ग टर्म बीइंग अ मोर एफिशिएंट सिस्टम।
विश्लेषण करेंगे भीड़ के हाथों हो रही बर्बरता को क्या राजनीतिक प्रश्रय प्राप्त है।
जो ये पूरा एस्टेब्लिशमेंट है जिसमें कि जुडिशरी भी शामिल है, वो जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज जो पावर में रही होती हैं या जो पावर में आने की जिनकी क्षमता होती है, उन लोगों के खिलाफ कोई सीरियस एक्शन लेने का दम बहुत कम देखा जाता है।
चर्चा होगी हॉकी वर्ल्ड लीग में आज हो रहे भारत हॉलैंड सेमीफाइनल मुकाबले की भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि जनरल सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी लागू करने के लिए संसद में विशेष सत्र का आयोजन किया जाएगा। 1 जुलाई से देश भर में जीएसटी लागू किया जाना है। अरुण जेटली ने कहा कि इस नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली की शुरुआत 30 जून की आधी रात को संसद के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में होगी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और एचडी देवेगौड़ा इस दौरान मंच पर मौजूद रहेंगे। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री और सांसदों को भी इसके लिए आमंत्रित किया गया है। आईसीसी चैंपियनशिप के दौरान भारत पाकिस्तान के बीच फाइनल में पाकिस्तान की जीत पर कथित तौर पर जश्न मनाने वाले 15 लोगों पर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इन सभी 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सभी मुस्लिम समुदाय के बताए जा रहे हैं और कथित तौर पर भारत विरोधी नारे लगा रहे थे। इन लोगों पर अपने गांव में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने के आरोप हैं। पाकिस्तान ने चैंपियनशिप के फाइनल में भारत को मात देकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली थी। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन ने कहा कि अमरीकी छात्र ओटो बाम्बियर की मौत के सिलसिले में उत्तर कोरिया पर बड़ी जिम्मेदारी है और उसे कई सवालों के जवाब देने होंगे। सीबीएस न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये साफ तौर पर बता पाना संभव नहीं है कि उत्तर कोरिया ने ही बाम्बियर की हत्या करवाई है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि जब बाम्बियर उत्तर कोरिया की हिरासत में थे तब वहां कुछ जरूर हुआ था। ओटो वाम्बियर 18 महीने तक उत्तर कोरिया में हिरासत में थे और पिछले हफ्ते ही उन्हें कोमा की हालत में अमरीका वापस भेजा गया था। अमरीकी डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें कई गंभीर दिमागी चोटें आई थी। अमरीका के पूर्व सांसद और न्यू मैक्सिको के गवर्नर रहे बिल रिचर्डसन ने कहा कि इसके बाद अमरीका और उत्तर कोरिया के रिश्ते और खराब हो सकते हैं।
ऑटो
वाम्बियर के साथ जो हुआ वो बहुत दुखद है। मैं खुद उसे उत्तर कोरिया से वापस लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे उत्तर कोरिया पर इसलिए गुस्सा आ रहा है क्योंकि वो ईमानदार नहीं है। वो एक साल पहले ही कोमा में चले गए थे और अमेरिका को इसकी जानकारी नहीं दी गई। अमेरिका और उत्तर कोरिया के रिश्ते काफ़ी ख़राब हो सकते हैं। ये मानवता के खिलाफ अपराध है और मानवाधिकार का उल्लंघन है। अमेरिका को इसकी जाँच करनी चाहिए, लेकिन उत्तर कोरिया ऐसा नहीं होने देगा। ये थे बिल रिचर्ड्स के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। पुर्तगाल के पेद्रगाओ ग्रांडे इलाके में जंगलों में फिर से भीषण आग लगने का डर बना हुआ है। जंगलों में भीषण आग में 64 लोगों की मौत हो चुकी है। पुर्तगाल में अधिकारियों ने कहा है कि जंगलों में 70% आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन बढ़ते तापमान और हवाओं के कारण फिर से आग फैलने की संभावना बनी हुई है। 1000 से ज्यादा फायर फाइटरों को जंगलों की आग बुझाने में लगाया गया है। इसमें कई गाँव जलकर खाक हो चुके हैं। स्थानीय अग्निशमन विभाग की एक अधिकारी ने ये बताया।
Neste momento mantém-se o número de vítimas mortais, bem como o do número de feridos.
फिलहाल मरने वालों की संख्या नहीं बढ़ी है। 834 लोग पेद्रगाओ ग्रांडे में आग बुझाने में लगे हुए हैं। हमने दो अन्य जगहों पर भी टीमें भेजी हैं। ये काफ़ी बड़ी आग थी। ज़्यादातर शवों को निकाल लिया गया है और घायलों का इलाज हो रहा है। ये थे स्थानीय अग्निशमन अधिकारी के शब्द। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। 1 जुलाई से भारत भर में गुड्स सर्विसेज टैक्स या जीएसटी लागू किया जा रहा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज जीएसटी लॉन्च की जानकारी देते हुए कहा कि इस प्रणाली की शुरुआत 30 जून की आधी रात को संसद के एक खास सेशन में होगी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और एचडी देवेगौड़ा इस दौरान मंच पर मौजूद रहेंगे। जीएसटी आजाद भारत में अब तक का सबसे बड़ा और सबसे अहम आर्थिक सुधार माना जा रहा है। जुबैर अहमद की रिपोर्ट।
30 जून को आधी रात के बाद पूरे देश में जीएसटी लागू कर दिया जाएगा। संसद के दोनों सदनों में होगा स्पेशल अधिवेशन। सांसदों, मुख्यमंत्रियों और राज्यों के वित्त मंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। इस तरह स्वतंत्र भारत में सबसे बड़े आर्थिक सुधार की होगी शुरुआत। भारत एक नए दौर में दाखिल हो जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीएसटी से संबंधित सारी जानकारी दी।
ओवर द मीडियम एंड द लॉन्ग टर्म, बीइंग अ मोर एफिशिएंट सिस्टम,
मध्यम से लंबी अवधि के बीच राजस्व बढ़ेगा, केंद्र और राज्यों की खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी और इसका जीडीपी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ये थे शब्द वित्त मंत्री अरुण जेटली के। श्री जेटली ने स्वीकार किया कि जीएसटी का श्रेय पिछली सरकार को भी जाता है। पहली बार 2006 में जीएसटी का आइडिया यूपीए सरकार ने दिया था। बड़ी कठिनाइयों के बाद इस साल इससे संबंधित बिल को दोनों सदनों में पारित कर दिया गया। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इससे गरीबों का फायदा होगा।
इस व्यवस्था के कारण, सभी ऑनलाइन होने के कारण, टेक्नोलॉजी आधारित होने के कारण हमें कॉस्ट ऑफ कलेक्शन में बहुत कमी आएगी, जो पैसे देश के गरीब व्यक्ति के विकास के भलाई के लिए काम आएंगे।
कई निजी कंपनियों ने कहा कि जीएसटी के लिए वो अभी तैयार नहीं है। उनका कहना था कि इसे लागू करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी जाए, लेकिन श्री जेटली ने इससे साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने सबको काफ़ी मौका दिया था कि वो जीएसटी के लिए तैयार हो जाएं। केरला और जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के सभी राज्य सरकारों ने भी इसे मंजूरी दे दी है। जुबैर अहमद, बीबीसी दिल्ली।
एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने बिहार के राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया है। विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए कौन उम्मीदवार होगा, अभी इस पर संशय बना हुआ है। मैंने वरिष्ठ पत्रकार अजय सिंह से संपर्क किया और पूछा कि विपक्ष कोविंद के मुकाबले किसके नाम पर मोहर लगा सकता है।
नहीं, ऑप्शन तो बहुत ज्यादा नहीं है। देखिए, एक चीज तो बहुत साफ है कि विपक्ष इसको एक वॉकओवर तो नहीं दे सकता है, यानी ये नहीं कह सकता है कि आपने दलित प्रेसिडेंट के लिए फेस कोई आगे किया है लिहाजा हम भी आपके साथ जाएंगे। तो ये ऑप्शन तो विपक्ष के पास बिल्कुल नहीं है, और अगर वो इस ऑप्शन की तरफ सोचता भी है तो हमें लगता है कि उनको दिक्कत होगी, क्योंकि वो स्पेस फिर रहेगा ही नहीं। तो अव्वल तो एक बात है कि अपोजिशन इसका होना है। अब अपोजिशन किस तरह का होना है वो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात होगी, जो कि अभी तक एक अगर आप देखें तो विपक्ष का रवैया कोई कोहेरेंट स्ट्रेटजी का नहीं दिखाई दे रहा है।
कुछ नाम जहन में आते हैं विपक्ष की तरफ से, अगर इसको काउंटर करने की कोशिश भी की जाए तो कौन लोग हो सकते हैं?
जो भी नाम जहन में है या जो भी नाम अखबारों में चल रहे हैं, उनको अगर देखिए तो वो कहीं से ऐसा नहीं आपको दिखाई देगा कि वो इस नाम के आगे आ पाएंगे। मीरा कुमार का नाम जैसे, अब मीरा कुमार को दलित फेस बोलना हमें लगता है थोड़ा सा उचित भी नहीं होगा, क्योंकि वो आईएफएस रही हैं, स्पीकर रही हैं, जगजीवन राम जी की बेटी हैं। तो कहीं से दलित फेस वो यूपी और बिहार में मानी जाएंगी, हमें उसमें दिक्कत लगती है। दूसरे नाम जो आपने देखे होंगे, उन नामों में कोई ऐसा दम हमें नहीं दिखाई दे रहा है जो कि इस नाम के आगे वो ना न्यूमेरिकल उसमें देखें तो कहीं सामने आ पाएंगे और अदरवाइज भी नहीं आएंगे।
ये बताइए, इतना इस पे इतना इसको महत्व क्यों दिया जा रहा है, जबकि ये बिल्कुल तय है कि विपक्ष अपना उम्मीदवार नहीं जितवा पाएगा राष्ट्रपति भवन के लिए, खासतौर से ये देखते हुए कि नवीन पटनायक ने भी समर्थन कर दिया है एनडीए का। आपको लगता है ये सिर्फ एकेडमिक लड़ाई है या?
देखिए, राजनीतिक स्पेस में अगर आप जानते भी हैं कि आप इलेक्शन हार जाएंगे, तब भी आप लड़ाई छोड़ते नहीं है, सिर्फ इसलिए कि हमें इस राजनीतिक धारा का अपोजिशन दिखाना है। तो उसमें तो हमें कोई एतराज दिखाई देता है, इवन अगर एकेडमिक एक्सरसाइज भी हो तो कोई राजनीतिक दल अगर इसको कर रहा है तो वो अच्छी बात है। पर दिक्कत यहाँ दूसरी है, दिक्कत यहाँ ये है कि अपोजिशन एक कोहेरेंट स्ट्रेटजी लेके आता जो कि बीजेपी के स्ट्रेटजी से ऊपर होती तो उसका इंटरेस्ट भी है, लेकिन ऐसा हमें दिखाई नहीं दे रहा है। वो जो स्ट्रेटजी भी लाएंगे या जो जो, जो लोगों के नाम आ भी रहे हैं वो सारे नाम ऐसे हैं जिसमें कि बीजेपी से ऊपर उनकी स्थिति दिखाई नहीं देगी, यानी इंप्रेशन के हिसाब से भी अगर दिखाई देना, मान लीजिए सिम्बॉलिक भी स्थिति अच्छी दिखाई दे तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन सिम्बॉलिक भी नहीं दिखाई देगी।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार अजय सिंह।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,510, 9,460, 11,795 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज पर।
गोरखालैंड की मांग को लेकर दार्जिलिंग हिल्स में पिछले 8 जून से आंदोलन चल रहा है। 15 जून से जारी बेमियादी बंद के छठे दिन आज दार्जिलिंग के जिमखाना क्लब में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। इसमें मोर्चे के अलावा गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट, गोरखा राष्ट्रीय निर्माण मोर्चा, गोरखा परिसंघ समेत 9 दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बीच हमारे सहयोगी रवि प्रकाश ने कोर्चियांग में प्रदर्शन कर रहे लोगों से बात की।
गोरखालैंड राज्य की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन दार्जिलिंग हिल्स के तमाम जगहों पर है। मैं कोर्चियांग से थोड़ा सा पहले एक गांव में हूं जहां के लोगों ने गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के झंडे के साथ प्रदर्शन किया है। इनकी मांग है कि गोरखालैंड राज्य जब तक नहीं बनेगा तब तक इनका आंदोलन खत्म नहीं होगा। क्या नाम है आपका, क्या चाहते हैं?
मैं नितेश देवन हूँ।
क्या चाह रहे हैं?
हम गोरखालैंड चाहते हैं।
गोरखालैंड बन जाएगा तो क्या होगा?
स्टेट होगा ना, स्टेट होने से हम लोग का स्टूडेंट जो लोग है उसका सर्विस मिलेगा, अभी तो नहीं मिल रहा है सर्विस भी, ठीक है। जो यहाँ पर यूनिवर्सली सब कुछ होता है।
क्यों आई हैं यहाँ, क्या चाहती हैं? क्या नाम है आपका?
मैं बसंती देवन हूँ।
क्या चाहती हैं?
मैं गोरखालैंड चाहती हूँ। इसके लिए तो हम आगे जा रहे हैं ना, जुलूस के लिए वही तो है।
आपका नाम क्या है?
शकुंतपा।
आप क्या चाहती हैं?
हम गोरखालैंड चाहिए।
तो आपको लगता है कि गोरखालैंड मिल जाएगा इस आंदोलन से?
हाँ मिलेगा, हम करेगा ना आंदोलन। जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम आंदोलन करेगा, हम जब तक चलेगा और रोज और दिन। हाँ भोग भी चलेगा, दो करो खुश दोनों से भी हम चलेगा, भोगी भी चलेगा, सब चलेगा। हाँ ठीक है, आपको गोरखालैंड चाहिए बस।
बोलना चाहते
हमको गोरखालैंड चाहिए और बंगाल से अलग होना चाहिए। इसके आगे जो हत्याकांड हुए दार्जिलिंग में उसके हम प्रतिवाद जनाते हैं। ये स्ट्राइक अभी लंबी चलेगा, हम जो भी मिलेगा वो खाएगा, लेकिन आंदोलन करेंगे। हमारा जो बातचीत होगा ऊपर लेवल का वो केंद्र से नहीं हो, राज्य से नहीं होगा, केंद्र से होगा। जो भी न्याय देगा मोदी सरकार देगा, ममता बनर्जी का कुछ भी आस नहीं है हमको। अब पार में ममता जी को हम चढ़ने भी नहीं देता है। हम लोग को दमन नीति नहीं चाहिए बंगाल को, हमारा गोरखालैंड चाहिए, हमारा सीपरेट स्टेट। एक वर्ष सात वर्ष हुआ है, हमारा अलग राज्य चाहिए। इसके लिए हम मांग कर रहे, हमारे डेली के डेली जुलूस में जा रहे, धरना कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं गोरखालैंड के लिए।
यहाँ के तमाम लोग यह चाहते हैं कि गोरखालैंड राज्य अलग बने और ममता बनर्जी की सरकार और केंद्र की सरकार के साथ न्याय करे। रवि प्रकाश, BBC, कोर्चियांग।
आंदोलनकारियों से बात कर रहे थे रवि प्रकाश। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को हराकर रिकॉर्ड जीत हासिल की। इस हार से भारतीयों में उदासी छा गई। देश में कश्मीर समेत कुछ जगहों पर पाकिस्तान की जीत को लेकर जश्न भी मनाए जाने की खबरें हैं। ऐसा ही कुछ नजारा मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भी देखने को मिला। 18 जून को खेले गए फाइनल में पाकिस्तान की जीत पर पटाखे फोड़ने और पाकिस्तान समर्थित नारेबाजी करने पर पुलिस ने 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया है। भोपाल से शुरे नियाजी की रिपोर्ट।
प्रदेश के बुरहानपुर के मोहत गांव के 15 युवकों को पुलिस ने देशद्रोह के मामले में हिरासत में लिया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने रविवार को खेले गए भारत पाकिस्तान मैच के बाद पाकिस्तान की जीत पर खुशियां मनाई और आतिशबाजी की। पुलिस ने सभी गिरफ्तार आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया। ये लोग रात में मैच खत्म होने के बाद घर से निकले और गांव में घूमकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और मिठाइयां बांटी। इन लोगों की उम्र 20 साल से लेकर 35 साल तक बताई जा रही है। इस मामले की जांच कर रहे अधिकारी आर के यादव ने बताया,
ये 18 तारीख को ICC चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान का मैच चल रहा था। इसमें जैसे ही मतलब भारत की हार की संभावना बढ़ी, विकेट गिरते गए, तो इन लोगों ने जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो पाकिस्तान का समर्थन करते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगाने लगे। नारे लगाने के बाद में फटाखे शुरू किए और फिर बाद में फटाखे फोड़ने के साथ साथ मिठाइयां बांटी, खुशियां मनाई, उसी की रिपोर्ट हुई, कार्रवाई की गई इनके खिलाफ देशद्रोह की। ये सब 20 से लगा के करीब करीब 35 साल की उम्र के लड़के और मतलब अधेड़ उम्र के व्यक्ति हैं। एक लड़का है वो सुभाष पिता लक्ष्मण कोहली करके हैं, मोहन घर गांव के, और ये भी मोहन के हैं। और भी मतलब गवाह वगैरह उसमें बहुत सारे करीब 16-17 लोग हैं। उसमें बेल तो नहीं होना है और भी इसमें अभी जा सकते हैं क्योंकि अन्य लोगों में आए तो अज्ञात मान लो और भी मगरा है सामने तो भी जा सकते हैं।
इसकी शिकायत सुभाष नाम के एक व्यक्ति ने की थी, जिसके बाद गांव के दूसरे लोगों ने भी बताया कि यहां पर इस तरह का मामला हुआ है। मोहत गांव में 60% मुसलमान लोग हैं और 40% दूसरे धर्म के हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों पर देश विरोधी कृत्य और देश के प्रति घृणा का माहौल पैदा करने का केस दर्ज किया गया है। आरोपियों पर धारा 120B और 124A के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। शुरह न्याजी, BBC न्यूज, भोपाल।
ये BBC है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फजल के साथ।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
BBC हिंदी।
हल में भैंस के साथ जुत्ता किसान और पीछे हल थामे चल रही पत्नी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के एक किसान की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। BBC संवाददाता दिलनवाज पाशा ने जब प्रशासन से बात की तो अफसर उसकी मदद के लिए दौड़ पड़े। सुनिए की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के बिजनौर के सालमाबाद के किसान सीताराम अपने खेत में भैंसे के साथ खुद भी जुत रहे हैं, पीछे उनकी पत्नी हल्था में हुए हैं। देश में किसानों की परेशानियों पर हो रही चर्चा के बीच उत्तर प्रदेश के बिजनौर के किसान सीताराम की हालत किसानों की बेबसी को बयां करती है। उनके पास सिर्फ एक ही पशु है और उन्हें खेत जोतने के लिए हल में खुद भी जुतना पड़ता है।
मुझे परेशानी और एक कटरा मेरे पास और मुझे कहीं से मदद नहीं लगती। सरकारी आदमी जब पेंशन थी वो भी मेरी कटने को जा रही और एक पुटरिया वो टूटी पुट्टी उसमें मैं पड़ा रहता हूँ।
सीताराम का एक हाथ कटा हुआ है, इस वजह से उनका आधार कार्ड नहीं बन पाया और अब उनकी पेंशन मिलने में भी दिक्कत है। अपने हाथ की ओर इशारा करते हुए आधार न बनने की वजह बताते हुए वो कहते हैं,
इसकी वजह से नहीं बनता है।
लेकिन सीताराम की परेशानियां यहीं खत्म नहीं होती। बीते 2 सालों से उनकी ईख भी आग लगने से स्वाहा हो रही है, लेकिन उन्हें कोई सरकारी मदद नहीं मिल पा रही है।
अब बताओ, केला कंडे पर हल रखूँ, एक जानवर है मेरे पास, तो क्या करूँ? गन्ना मेरा फूक गया, उसके कोई सहारा नहीं मिला मुझे सरकार का।
इस मजबूर किसान की पत्नी मुन्नी देवी उनके साथ मजबूती से खड़ी रहती है। वो अपने पति को अपना मालिक बताते हुए कहती हैं,
देखो मैं अपने मालिक की मदद करती हूँ, मेरा एक पशु है, मैं मालिक का हल जोतती हूँ, पीछे से मैं हल पकड़ती हूँ, जोतती हूँ, उन्हें मैं अपने सहारे से लगाती हूँ।
मैंने जब बिजनौर के जिलाधिकारी जगतराज त्रिपाठी को सीताराम के मामले के बारे में बताया तो उन्होंने तुरंत उनकी मदद करने का आश्वासन दिया। अगले 1 घंटे के भीतर उन्होंने सीताराम के परिवार को अपने घर बुलवा लिया। DM जगतराज बताते हैं,
ये जो फोटो वायरल हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया। इनका नाम सीताराम सनाप जगराम है, ये ग्राम सालमाबाद तहसील बिजनौर के रहने वाले हैं। इनके 2 बेटे हैं और पत्नी है, एक बेटा इनका साथ में रहता है। तो इस तरह से जो साथ में रह रहे हैं उनको लेकर 3 लोग हैं। तो इनका पात्र गृहस्थी का कार्ड नहीं बना था, तो अभी हमने तत्काल प्रभाव से इनका पात्र गृहस्थी का कार्ड बनवा दिया है। शौचालय दिया गया है, इंद्रावास भी हम करवा दे रहे हैं। भैंसे के लिए इनको कहा गया था, ये भैंसा लेने को तैयार नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इनके पास एक भैंसा है।
सीताराम की बेबसी की तस्वीर सामने आने के बाद उन्हें तो मदद मिल गई है, लेकिन ऐसे कितने ही और किसान हैं जिन्हें अभी अपना हक मिलना बाकी है। दिलनवाज पाशा, BBC।
भारत में पिछले कुछ समय में भीड़ के हाथों हत्याओं की घटनाएं सामने आई हैं। दादरी में फ्रिज में गोमांस रखने के शक में अखलाक की हत्या हो या झारखंड में बच्चा चोरी की अफवाह में दो लोगों की जान लेने वाली भीड़। प्रधानमंत्री ने स्वघोषित गौरक्षकों को अपराधी तक कहा, लेकिन भीड़ के हाथों बर्बरता का सिलसिला थमा नहीं है। कहीं न कहीं ये सवाल भी उठ रहे हैं कि इस हिंसक भीड़ तंत्र को राजनीतिक प्रश्रय मिलता है। राजेश जोशी की रिपोर्ट।
बोल जय श्री राम।
जय श्री राम।
जोर से बोल।
जय श्री राम।
जय श्री राम।
बेटा हमें मत मारियो।
जय श्री राम। जय श्री राम। बोल।
बिजली के खंभे से बंधे एक नौजवान को घेर कर पीटते हुए उसके हमउम्र लड़के, ये दृश्य कहीं का भी हो सकता है। YouTube में ऐसे वीडियोस की भरमार है। दादरी में अखलाक, अलवर में पहलू खान, लातेहार में मोहम्मद मजलूम और आजाद खान, ये नाम उन लोगों के हैं जिन्हें कातिल भीड़ ने अलग अलग जगहों पर पीट पीट कर मार डाला। जब ये घटनाएं बढ़ने लगी तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे खुद मुख्तार गौरक्षकों को अपराधियों का गिरोह बताया।
मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूँ कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं।
लेकिन प्रधानमंत्री के इस भाषण का बहुत असर नहीं पड़ा। गाय बचाने के मिशन पर निकले गिरोह अब भी लगातार सक्रिय हैं। कातिल भीड़ सिर्फ गाय बचाने वालों की नहीं है। कुछ समय पहले झारखंड में बच्चे उठाने की अफवाह फैलाकर 7 लोगों को पीट पीट कर मार डाला गया। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में सरकारी कर्मचारियों ने कथित तौर पर एक आदमी को पीट पीट कर मार डाला क्योंकि उसने खुले में शौच करने पर मजबूर महिलाओं की तस्वीर ले रहे उन कर्मचारियों को रोकने की कोशिश की थी। इस कातिल भीड़ को यह भरोसा कैसे मिलता है कि वो सरेआम किसी की भी जान लेने को आजाद हैं और उनका कुछ नहीं बिगड़ सकता? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण कहते हैं कि इसके लिए पूरा तंत्र जिम्मेदार है।
जो ये पूरा एस्टेब्लिशमेंट है, जिसको हम लोग एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, जिसमें कि जुडिशरी भी शामिल है, वो जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज जो पावर में रही होती हैं या जो पावर में आने की जिनकी क्षमता होती है, उन लोगों के खिलाफ जो पावरफुल लोग हैं, चाहे वो भले ही आज ऑपोजिशन में हो, उनके खिलाफ कोई सीरियस एक्शन लेने का दम बहुत कम देखा जाता है।
राजनीतिक पार्टियां कई बार भीड़ की हिंसा को एक सामान्य घटना बताकर उसकी आपराधिक गंभीरता को कम करती हैं। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद व्यापक पैमाने पर हुए सिख विरोधी दंगों को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एक हल्की फुल्की घटना की तरह पेश किया।
कुछ दिन को दुनिया, कुछ दिन के लिए लोगों को लगा कि भारत हिल रहा है, लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है।
इसी तरह 2002 में गुजरात में हुए मुस्लिम विरोधी दंगों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कड़ी आलोचना होती रही है। इस बारे में उनका एक बयान काफी विवादास्पद भी हुआ।
कोई भी व्यक्ति, हम अगर कार चला रहे हैं, वी आर अ ड्राइवर, और कोई ड्राइव कर रहा है और हम पीछे बैठे, फिर भी एक छोटा कुत्ते का बच्चा भी कार के नीचे आ जाता है तो हमें पेन फील होता है कि नहीं? होता है।
जिस भाव से नरेंद्र मोदी ने कुत्ते का बच्चा मुहावरे का इस्तेमाल किया, उसमें किसी समुदाय की बेइज्जती करना उनका मकसद नहीं रहा होगा, लेकिन इस जुमले का लोगों ने जो चाहा वो अर्थ लगाया। पर ऐसा हमेशा नहीं हुआ। अलवर में 1 अप्रैल को जब कथित गौरक्षकों ने पहलू खान नाम के आदमी को पीट पीट कर मार डाला तो राज्य के गृहमंत्री गुलाब राय कटारिया ने दोनों पक्षों को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की।
क्या है कि दोनों तरफ से है, जब उनको मालूम है कि राजस्थान से गो तस्करी नहीं हो सकती, कानून बना हुआ है, तो कुछ गो भक्त भी हैं जिनको जैसी सूचना मिलती है इस कानून के तहत रोकने का प्रयास करते हैं। रोकना तक तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन कानून हाथ में लेना यह अपराध है।
और जब 2015 में दादरी के पास उन्मादी भीड़ ने फ्रिज में गोमांस रखने की अफवाह के आधार पर अखलाक नाम के एक अधेड़ का कत्ल कर दिया तो केंद्रीय संस्कृति मंत्री महेश चंद्र शर्मा ने इसे दुर्घटना बताया।
जिस परिवार के साथ ये घटना हुई है, उस परिवार के साथ 2 परिवार और भी रहते हैं जो गांव के बीच में हैं। उनकी दीवारें आपस में छूती हैं, उनको किसी को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा, तो ये एक दुर्घटना माना जाए।
सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण की चिंता है कि ऐसे अपराधों की सख्त सजा न मिलने से भारतीय शासन तंत्र की प्रकृति बदली जा रही है।
जिस तरह का मॉब वायलेंस देखने को मिल रहा है, जो कि चलता चला जा रहा है, रोज ही इस तरह की लिंचिंग वगैरह हो रही है, इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान बिल्कुल एक फासीवाद की तरफ बढ़ रहा है।
लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सिद्धांतकार के एन गोविंदाचार्य मानते हैं कि हिंसा आत्मरक्षा में भी की जाती है।
कारण और होगा कि ऐसे राष्ट्रवादी लोगों के सत्ता में आने से कई जो अपने को भी जातीय तत्व मानते हैं वो परेशानी का अनुभव करते हों और वो उस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करते हों, वो डेमोक्रेटिकली नहीं लड़ना चाहते हों, ये भी तो एक कारण हो सकता है।
और उसके बाद उन पर बदला या रिटेलिएशन होता है।
बदला की जरूरत नहीं, अपने लिए आत्मरक्षा के लिए तो कर ही सकते हैं लोग।
लेकिन वो ये भी कहते हैं कि कानून अपने हाथ में लेना बिल्कुल ठीक नहीं।
हम मानते हैं कि तो कानून को अपने हाथ में लेकर चलना ये किसी भी हालत में क्षम्य तो नहीं होना चाहिए।
ये थे गोविंदाचार्य के शब्द। नदीम खान एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और भीड़ के शिकार हुए लोगों को न्याय हासिल करने में मदद करते हैं। उनका कहना है कि पूरा तंत्र इस रास्ते में रोड़े खड़े करता है।
ज़्यादातर केसेस जो लिंचिंग के होते हैं उनमें लोग बहुत गरीब होते हैं, वो खुद अपने केस की पैरवी नहीं कर सकते हैं, उनको कोई ना कोई एक्टिविस्ट चाहिए होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होती है उनको सपोर्ट करने के लिए। तो पहला टारगेट वो एक्टिविस्ट और वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। पुलिस थाने में उनको बुला के धमकाना शुरू किया जाता है कि आप इस केस से हट जाइए, आप इससे दूर हो जाइए, फिर उनको नोटिसेस सर्व करनी शुरू कर दी जाती हैं।
ऐसे माहौल में राजस्थान हाईकोर्ट के एक जज ने गाय को राष्ट्र पशु घोषित किए जाने की सिफारिश की। द वायर के संपादक सिद्धार्थ वरदराजन मानते हैं कि ऐसे फैसलों से विजिलंटी या गौरक्षक गिरोहों के हौसले बुलंद होते हैं।
डेफिनेटली उनकी बातों से जो मॉब मेंटालिटी रखने वाले लोग हैं उनको इंकरेजमेंट तो मिलेगा।
ऐसा लगता है कि लिंचिंग की एक घटना के बाद पूरा देश जैसे दूसरी घटना होने का इंतजार करता है और जब वो घटना हो जाती है तो एक बार फिर से निंदाओं और सार्वजनिक भर्त्सनाओं का एक और दौर शुरू हो जाता है।
मुझे इतना गुस्सा आता है, मुझे इतना गुस्सा आता है, मुझे इतना गुस्सा आता है, मुझे इतना।
राजेश जोशी, बीबीसी दिल्ली।
आज वर्ल्ड हॉकी लीग के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला हॉलैंड से हो रहा है। इससे पहले भारत स्कॉटलैंड, कनाडा और पाकिस्तान के खिलाफ अपने तीनों मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंचा है। राखी शर्मा इस मैच पर नजर रखे हुए हैं, क्या है स्कोर?
जी रेहान जी, मैच खत्म हो चुका है और भारत के पक्ष में नतीजा नहीं आया है। 1-3 से भारत को ये मैच गंवाना पड़ा है और नीदरलैंड्स की टीम पूल बी के अपने सभी मैच जीतकर 12 अंकों के साथ टॉप पर रही है। हालांकि भारतीय टीम पहले ही क्वार्टर फाइनल में जगह बना चुकी है, लेकिन इस मैच की बात की जाए तो नीदरलैंड की टीम ने अपनी पकड़ पूरे मैच पर बनाए रखी और भारत को वापसी के कम ही मौके दिए। अपनी आक्रामक खेल के लिए जाने जाने वाली नीदरलैंड्स की टीम ने खेल के दूसरे ही मिनट में गोल कर भारत को पहला झटका दिया, जिसके बाद डच टीम ने भारत पर एक के बाद एक कई हमले किए। 12वें मिनट में नीदरलैंड ने एक बार फिर आक्रामक तेज कर अपना पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया और इस पेनल्टी कॉर्नर को सैंडर बर्ड ने गोल में तब्दील कर टीम की बढ़त को 2-0 कर दिया। इसके बाद 24वें मिनट में नीदरलैंड की टीम ने एक बार फिर भारत के गोल पोस्ट में गेंद पहुंचाई और जो बढ़त थी उसे 3-0 कर दिया। भारत को जो इकलौती सफलता मिली मैच में वो 28वें मिनट में जब आकाशदीप ने खुद को मिले पास को गोल में बदला।
तो इस तरह से हॉलैंड ने जीत दर्ज की। हॉलैंड, जिसे नीदरलैंड्स भी कहा जाता है, 3-1 से भारत के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद राखी शर्मा आपका। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी यानी कि गुड सर्विसेज टैक्स को लागू करने के लिए 30 जून की आधी रात को संसद में विशेष सत्र का आयोजन किया जाएगा। भारत पाकिस्तान के बीच आईसीसी चैंपियनशिप फाइनल में पाकिस्तान की जीत पर कथित तौर पर जश्न मनाने वाले 15 लोगों पर मध्य प्रदेश में देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। रूस की चेतावनी के बाद ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना ने सीरिया में सभी हवाई ऑपरेशन रद्द कर दिए हैं। अमरीकी सेना ने सीरिया में एक ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे राजेश चौहान, रेहान फदल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।